प्रकरण 9 श्री कृष्ण। मैं जानता था कि युद्ध कभी अंतिम सत्य नहीं होता। युद्ध से समस्याएं कभी सुलझती नहीं, प्रश्न हल नहीं होते, बल्कि युद्ध के विशाल नरसंहार से यह गंभीर भय उत्पन्न हो जाता है कि मनुष्य जाति कहीं श्रद्धा ही न खो बैठे। समाज के पतनोन्मुख होने का भय रहता है, राष्ट्र की सांस्कृतिक नींव के हिल जाने की संभावना रहती है। जिन रम्य सपनों को मानव जाति पीढ़ी दर पीढ़ी अपने हृदय से लगाए रही है, उनके भंग होने का डर रहता है। जीवन का मूल उद्देश्य खोजते समय संभ्रम के काले काले वलय बुद्धि को घेर सकते हैं। फिर भी मैंने कुरुओं और पांडवों का महायुद्ध प्रज्वलित कर दिया था। लक्ष लक्ष योद्धाओं की बलि लेने वाला युद्ध मृत्यु का महायज्ञ आरंभ किया था। प्रत्येक मन में संचित सुप्त क्रूरता का मुक्त विस्फोट करने वाला रोमांचक खेल प्रारंभ किया था। कणकण में विद्यमान जिस चेतना से विश्व संचालित होता है, उन तेजस्वी कणों का रोमांचक संघर्ष प्रारंभ कर दिया था। क्यों, इसलिए? क्या इसलिए कि मैं एक पाषाण हृदय वधिक था? क्या मैं यह चाहता था कि संसार में कोई जीवित ही न बचे? आर्यावर्त में क्रूरता का, अश्रद्धा का, अराजकता का, स्वेच्छाचार का साम्राज्य छा जाए, इसलिए? कदापि नहीं। मैंने युद्धाग्नि प्रज्वलित की थी। हाथ से गांडीव को फेंक कर नातों के प्रेम में भ्रांत हुए शुष्क कंठ वाले अर्जुन को पुनः धनुष उठाने को प्रवृत्त किया था। स्वयं उसके घोड़ों का संचालन करने के लिए उसके नंदी घोष रथ की बलगाएं अपने हाथ में ले ली थी। युद्ध के तीसरे दिन ही हाथ में शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा भंग हो गई, फिर भी मैंने उसकी कोई चिंता नहीं की। क्यों किया था मैंने यह सब? किस लिए? द्रौपदी के निष्कलंक चरित्र की घोर विडंबना करने वाले दुर्योधन दुशासन को केवल दंड देने के लिए? शकुनी मामा की कपटपूर्ण राजनीति का सदा के लिए उन्मूलन करने के लिए? भीष्म द्रोण की मुग्ध और असमर्थ तटस्थता का मुंह खोलने के लिए? धृतराष्ट्र की अंधी आंखों में सत्य का चमचमाता अंजन लगाने के लिए? कर्ण के मार्ग भ्रष्ट, पथच्युत और अखंड संभ्रमित जीवन को स्वर्ग का सुयोग्य मार्ग दिखलाने के लिए? नहीं। यदि केवल ऐसा ही कोई उद्देश्य मेरा होता तो मेरा कार्य सरल था। विशेष उद्देश्य के लिए विशेष उपाय योजना कर मैं उसको पूर्ण कर लेता। केवल दो राज सिंहासनों का भी प्रश्न मेरे सामने नहीं था। मेरे सामने प्रश्न था संपूर्ण मानव जाति का, प्रश्न था चिरंतन अंतिम सत्य का, प्रश्न था विविध प्रकार के अनगिनत कुंभ धारण कर रहने वाले अमर आत्मतत्व का। संसार का अंतिम और कभी न बदलने वाला सत्य है प्रकामय अमर चैतन्य। उसका अनुभव कोई भी अपने विलास सज्जित रंगभवन में रहकर कभी नहीं कर पाता। विशुद्ध आसक्ति पर जीवित रहकर पानी में जैसे हाथी से मगर चिपट जाता है, वैसे ही आसक्ति से चिपट कर इसका साक्षात्कार कोई कभी नहीं कर पाता। इसके लिए तो शरीर के एक एक स्नायु को इस बात का घनिष्ठ और निर्भ्रांत परिचय प्राप्त करना होता है कि जैसे दिन के बाद रात होती है, वैसे ही जीवन के बाद मृत्यु अनिवार्य है। मन, शरीर, बुद्धि सबको आत्मनिर्भर होना पड़ता है। तदनंतर आवश्यकता नहीं रहती कि कोई अन्य व्यक्ति सत्य को बताए, उसको सिद्ध करे। वह स्वयं ही प्रत्येक शरीर से प्रकट होने लगता है। मुक्ति अथवा सर्वश्रेष्ठ आत्मानुभव कभी भीख मांगने से प्राप्त होने वाली वस्तु नहीं। दूसरे के अन्न खाने से अपनी क्षुधा कभी शांत नहीं होती है। दूसरे के जल पीने से अपनी तृष्णा कभी तृप्त नहीं होती है। ठीक इसी प्रकार किसी के उपदेश मात्र से किसी का उद्धार नहीं होता। जहाँ जहाँ जीवन होता है, वहाँ वहाँ प्रकट होने की लालसा होती है, मुक्ति के लिए छटपटाहट होती है। बाहर से यह भले ही दिखाई न देता हो, परंतु भीतर अविराम गति से यही कार्य चलता रहता है। जीवन का अर्थ है प्रकटन। कभी कभी इस प्रकटन का प्रलयकारी दृश्य मानव जाति के सम्मुख आया करता है, क्योंकि ग्रंथ, उपदेश, नीति तत्व उनका उल्लंघन कर वह आसक्त बन जाती है। जग में दृश्य वस्तुओं के परे और एक सूक्ष्म जगत है, यह देखने के लिए भी उसके पास समय नहीं होता। उस समय मानव जाति को घड़ी भर कहीं रुकना पड़ता है और उसके लिए युद्ध जैसा प्रभावशाली अन्य कोई मार्ग नहीं होता। मैंने युद्धाग्नि प्रज्वलित की थी मात्र इसलिए। 2-10 दिन हो गए थे। युद्ध की भयंकरता बढ़ती ही गई थी। उसकी गर्जना अति भयंकर हो उठी थी। अपने प्राण प्रिय भक्त अर्जुन के नंदी घोष रथ के रथनीड़ पर बैठकर उसके गतिमान रथ के श्वेत शुभ्र घोड़ों का संचालन करते हुए स्वच्छंद रूप से चतुरंग दल में भ्रमण करते हुए मैंने वह देखा था। उसको देखते समय जिस पांडव पक्ष की सहायता के लिए मैं सारथी के रूप में ही सही कुरुक्षेत्र में उतरा, उन पांडवों के विजय का निश्चय मुझे पहले दिन से ही दृढ़ता से हो गया था, क्योंकि अर्जुन समेत पांचों पांडवों को कृतांत काल जैसा लगने वाला असीम विक्रमी सूर्यपुत्र कर्ण भीष्म का पतन होने तक सम्रांगण में उतरने वाला ही नहीं था। उसके समान अखंड साधना से सूचीभूत योजना कुशल चलंत पराक्रमी सेनानायक कुरुओं के पक्ष में दूसरा कोई नहीं था। इसलिए शिष्टाचार वर्ष जब मैं हस्तिनापुर गया था, तब उसके दिव्य कुल का स्पष्ट परिचय देकर मैंने उसको पांडवों के पक्ष में लौटाने का भरसक प्रयत्न किया था, परंतु महासागर जैसे उसके निश्चय को बदलने में सुदर्शन धारण करने वाले मेरे हाथ भी विफल सिद्ध हुए थे। मेरे सत्य कथन से उसका कुछ तेजो भंग हो सकेगा क्या, इस बात पर हस्तिनापुर से लौटते हुए मैंने विचार किया था, परंतु ऐसा होना बिल्कुल ही असंभव था। उसने यही सिद्ध कर दिया था कि जो भंग हो जाता है वह तेज नहीं होता, बल्कि वह सूर्यपुत्र है। यह समझते हुए उस पर जो प्रतिक्रिया हुई थी वह मुझको चकित कर देने वाली थी। विदुर ने मुझे बताया था कि मुझसे मिलकर लौटने पर मैं सूर्यपुत्र हूँ की गर्जना करते हुए उसने 5 सुवर्ण जलकुंभ अंक में भरकर लुढ़का दिए थे। कभी कर्ण भीष्म के पतन होने तक समरांगण में पैर नहीं रखने वाला था। इंद्र पहले ही अपने पुत्र अर्जुन के लिए बड़ी कुशलता से उसके कवच कुंडल हस्तगत कर चुका था। परशुराम ने तुझको ठीक युद्ध के अवसर पर ब्रह्मास्त्र स्फुरित नहीं होगा का मर्मभेदी श्राप दिया था। महेंद्र पर्वत पर ब्राह्मण के तेरे रथ के चक्र को भूमि भी युद्ध में इसी तरह गाड़ रखेगी, उद्गारों की कभी कोई भूल नहीं सकता था। कुंती देवी को तो उसके 4 पुत्रों का अभय दिया था। सूर्यपुत्र होकर भी प्रथम पांडव कर्ण की पात्रता मेरी जैसी अर्थात एक सारथी जैसे ही रह गई थी, परंतु सचमुच यही बात थी क्या? युद्ध का 11वां दिन उदित हुआ। कुरुओं का त्रिकोणी भगवान राजध्वज हाथ में लिए गुरुदेव द्रोण कौरवों का नेतृत्व करने के लिए दृढ़तापूर्वक हमारे सामने आ खड़े हुए। द्रोण सभी शस्त्र अस्त्रों के साक्षात चलते फिरते वेद थे। 10वें दिन भीष्म के पतन के कारण रात भर विकल रहने वाले कुरुसेना द्रोण को सेनापति के वेश में देखकर फिर रणोत्सुक होकर आवेश से गर्जन करने लगे। कुरुक्षेत्र का मुक्त वातावरण उनके गगनभेदी अखंड जय जयकार से निनादित होने लगा। आज पहली बार ही द्रोण के नेतृत्व में प्रचंड रथदल के प्रमुख के रूप में कर्ण सम्रांगण में उतरा था। लता बेलों से सुशोभित दमकते विशुद्ध सुवर्ण से मंडित अपने जैत्र रथ में सबसे लंबा होने के कारण वह ऐसा शोभायमान हो रहा था जैसे हिमालय पर कैलाश पर्वत का उत्तुंग शिखर शोभित होता है। उसके रथ पर हाथी को बांधने वाली श्रृंखलाओं के सुचिन्ह से युक्त काषाय वर्ण का अतुलसी राजध्वज इतना फड़फड़ा रहा था कि उसके फड़फड़ाने के कारण उसको धारण करने वाला अणिदार सुवर्ण ईशादंड निरंतर डगमग डगमग हिल रहा था। सर्वांग पर लहुत्राण पहने हुए कर्ण राख से ढके हुए तप्त धधकते अंगारे जैसा ही था। उसके पास कवच कुंडल नहीं थे, उसका जीवन शाप दग्ध था, फिर भी वह अंगारे जैसा ही दाहक था। कितना ही छोटा क्यों न हो, फिर भी अग्नि का स्फुलिंग तो सदैव स्फुलिंग ही रहता है। मैं अच्छी तरह जानता था कि ताजे उत्साह वाले कर्ण के आगे अर्जुन को लाने में कोई भी बुद्धिमानी नहीं थी, इसलिए रात को शिविर में जो बैठक हुई थी उसमें कर्ण के भय से चिंताक्रांत होकर बार बार उस सूतपुत्र राधे का क्या होगा यह कहने वाले युधिष्ठिर को मैंने समझा दिया था कि जीवन भर दग्ध करने वाली अवहेलना से तथा स्थान स्थान पर होने वाले मान भंजन से बौखलाए हुए कर्ण रूपी झंझावात के सम्मुख अर्जुन जीर्ण पड़कुटी की तरह क्षण भर में धराशायी हो जाएगा। उसको रोकने के लिए शक्ति एक ही व्यक्ति में है, भीम काय पर्वत काय भीम में। इसलिए हमने सर्वसम्मति से पहले भीम को कर्ण से भिड़ाने का निश्चय किया। वचन प्रिय अमरषि कर्ण कुंती देवी को दिए गए वचन को कभी भूल नहीं सकता था। भीम को वह मारने वाला नहीं था, अर्जुन के अतिरिक्त अन्य किसी का भी वह प्राणांतक आक्रमण करने वाला नहीं था। अब उसका पराक्रम दांत उखाड़े हुए भुजंग और नखाग्र काटे हुए सिंह जैसा ही था। भीष्म के नेतृत्व में द्वैरथ द्वंद्व संकुल और पाषाण क्षेपण का जो घनघोर युद्ध हुआ था उसमें पांडवों के 5 लाख योद्धा काम आ गए थे। भीम श्वेत सात्यकी अर्जुन दृष्टद्युम्न युयुधान इन लोगों ने कौरवों के 10 लाख योद्धाओं को यम सदन पहुंचा दिया था। फिर भी कौरवों की सैन्य संख्या अधिक थी। कर्ण और द्रोण को सम्मुख रखकर 15 लाख का महासागर निरंतर खौल रहा था। हमारे नंदीघोष के पीछे 10 लाख सेना खड़ी थी। सूर्योदय होने पर अपने कंधों के बराबर ऊंचे और विविध आभूषण से सुशोभित सुवर्ण मंडित नाना रूप की ही जो विजय था, उस अपने भारी धनुष को रथदल के प्रमुख के रूप में कर्ण ने बहुत ऊंचा उठाकर इधर उधर घुमाया। अपना हिरण्य गर्भ नामक शुभ्र धवल विशाल शंख उसने अपने सतेज कंठ की घोड़ों के बलगांव जैसी दिखाई देने वाली मोटी मोटी रक्तमयन से फुलाते हुए बड़ी जोर से फूंका। जितना गगन भेदी नाद उसके शंख का था, उतना अन्य किसी का नहीं था। नाग के सामने दौड़ते हुए अपने सहस्त्र रश्मि पिता को वह शंखनाद सुनाकर मानो कह रहा था, अंधकार भस्म करने वाली तुम्हारी किरण शलाकाओं की तरह ही मेरे अमोघ नाराज सर्पमुख सुवर्णपुंख सूचि जिम्म वस्तिक गजास्थि गोमुख चंद्रपत्ति गृध्रपत्र आदि विविध बाण आज अर्जुन को दग्ध कर देंगे। अपने राजध्वज पर अंकित हाथी की श्रृंखलाओं में मैं उसके ध्वज पर अंकित कपि वानर को कसकर जकड़ दूंगा। योद्धाओं को रोंगटे खड़े कर देने वाला हिरण्य गर्भ का भेदक शंखनाद कर उसने विराट रथदल को आगे बढ़ने के लिए भेदक चेतनामय संकेत दिया। उसकी हल्की नीली आंखें क्रोध से गहरी नीली दिखाई देती रहीं। सेनापति द्रोण है या भूलकर उसका अनुसरण करने वाले महारथी अंगराज कर्ण जयतु 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 कहते हुए उसी के नाम का अविरत जय जयकार करने लगे। बड़वानल से गिरे हुए निषद पर्वत जैसे दिखाई देने वाले उस प्रथम पांडव को देखकर प्रत्येक पांडव योद्धा को ही नहीं बल्कि मुझे भी ऐसा आभास हुआ कि कहीं सूर्य ही दूसरा रूप धारण कर श्वेत घोड़ों के वेगवान रथ पर आरूढ़ हो गया है क्या। पौर्णमासी के दिन जैसे महासागर गरजता है, वैसे ही अपना विजय धनुष ऊंचा कर वह गरज रहा था। वह क्षण भर में ही पांडव सेना में ऐसे घुस गया जैसे नदी की दह में प्रवेश करने वाला मगर सरसर पानी टारता हुआ आगे दौड़ता है। उसकी क्रुद्ध आंखें निरंतर अर्जुन के रथ पर लगे ध्वज को ही ढूंढ रही थी, परंतु अर्जुन को घेरे हुए भीम ही पुनः पुनः उसके सम्मुख जाने लगा। मैंने कुशलता से अर्जुन का नंदी घोष कर्ण के सामने न जाने देकर द्रोण के सामने उपस्थित कर दिया। केवल एक रथ में बैठकर भ्रमण करते हुए दिग्विजय में समस्त आर्यावर्त को पदाक्रांत करने वाला दान साधना धैर्य और शुचिता से तप्त लौह जैसा दिखाई देने वाला यह पहला कौंतेय और बकासुर हिडिंब जरासंध जैसे विशालकाय व्यक्तियों का वध करने वाला बलाढ्य भीम दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो गए। दो मत्त वन्य गजों की तरह एक दूसरे पर टूट पड़ने से पहले क्षण भर रुक कर वे एक दूसरे पर लक्ष्य साधने लगे। क्षण भर में उनका हृदय कपा देने वाला रोमहर्षक संघर्ष प्रारंभ हो गया। बाण से बाण टकराने लगे। क्रुद्ध भुजंग की तरह उष्ण निश्वास छोड़ते हुए बाणों से उन्होंने पण भर में ही सारा आकाश आच्छादित कर दिया। मृग नक्षत्र की अनिरुद्ध वर्षा की तरह बाणों की निरंतर अखंड धाराएं कर्ण के धनुष से छूटकर भीम के पथक में लड़ने वाले विराट मत्स्य और पांचालों को संत्रस्त करने लगी। जैसे मध्याह्न का सूर्य मरुस्थल की बालू का कण कण संतप्त कर देता है, वैसे ही उसके दाहक अग्निबाण पांडवों की सेना को दग्ध करने लगे। उसके बाणों से घिरा हुआ भीम इतना व्याकुल हो गया कि उसने हाथ से धनुष फेंक कर मरेयक मध्य के कुंभ पेट में उलेड़ कर अपने रक्त की एक एक बूंद को पहले उत्तेजित कर लिया। गुंजा जैसे लाल नेत्र चारों ओर घुमाता हुआ वह आवेग से कर्ण पर इस प्रकार टूटा कि उसने सतत 8 बार उसके विजय धनुष की दृढ़ प्रत्यंचा को तड़ातड़ तोड़ दिया। 5 बार कर्ण के रथ को उध्वस्त कर उसे विरत किया। सारथी सत्यसेन को आहत कर दिया। जैसे ही सत्यसेन रथनीड़ से गिरा, कर्ण ने हाथ से धनुष फेंक दिया। सत्यसेन का कंपित सिर जांग पर रखकर वह उसको संभालने लगा था। सत्यसेन सत्यसेन कहकर उसकी मूर्छा दूर करने लगा। इतने में क्रुद्ध भीम ने एकदम अपने रथ से उसके रथ पर कूद कर उसके सुदृढ़ रथ को चूर चूर कर दिया। सत्यसेन गिर पड़ा था, फिर भी कर्ण अतिशय सौम्य भाव से लड़ रहा था। माता को दिए गए वचन का पालन कर रहा था। भीम के आक्रमणों को वह केवल रोक रहा था, परंतु मेरे एक मध्य का नशा चढ़ने से जब भीम समुद्री पवन की तरह उछिंखल हो गया, तब कर्ण से न रहा गया। उसकी नीली आंखें क्रोध से लाल हो गईं। वह शाक की तपती हुई धधकती धूप की तरह वह जो सामने आता उसी को जलाता हुआ भीम पर टूट पड़ा। जैसे क्षण भर में ही गंगा का विशाल पात्र घने कोहरे से आच्छादित हो जाता है, वैसे ही उसने अपने अमोघ बाणों की निरंतर वर्षा कर विशालकाय भीम को क्षण भर में ही पूर्ण आच्छादित कर दिया। उसके शरीर में स्थान स्थान पर मर्म भेदी बाण घुसे हुए थे। ऐसा भीम रथ से धड़ाम से ऐसे नीचे गिरा जैसे तूफान में डौलदार शाल वृक्ष उखड़कर गिर पड़ता है। धरती हिल उठी, वायुपुत्र भीम मूर्छित हो गया। सोते समय भी धरती को कभी पीठ न दिखाने वाला अजय भीम धराशायी हो गया था। आंखों से विजय के आनंद की चिंगारियां बरसाता हुआ कर्ण अपने रथ से एकदम नीचे कूद कर वायु गति से उसके मूर्छित देह को ओर दौड़ा। उसको रोकने के लिए शक्ति किसी में भी नहीं थी। कुछ क्षणों में सचेत होकर रक्तवर्णी आंखों खोलता बंद करता हुआ भीम उठने का प्रयत्न करने लगा। उसके कंठ में अपने विख्यात धनुष की प्रत्यंचा को फंदे में डालकर कर्ण ने उसको जोर से झकझोरा और भीम ने अखाड़े में सर्वप्रथम सुतपुत्र कहकर उसकी अवहेलना की थी। वह सूर्यपुत्र उपहास करता हुआ गरज कर बोला, अरे अनाप शनाप बोलने वाले, हाथ में प्रतोद लेकर आज तेरी उन्मत्त पीठ पर खाल खींचने के लिए तक उसका प्रयोग करूं क्या? जा, मेरी आंखों के आगे से चलता बन। जहां पंच पक्कानों के ढेर लगे हुए हों उस पाकगृह में जाकर अपनी लपलपाती जीवा को शांत कर। फिर कभी इस कर्ण के सम्मुख आने का साहस मत करना, जा चला जा। लज्जित भीम सिर झुकाकर उस विख्यात दानवीर से प्राणदान लेकर लौटा। पहली बार भीम का गर्वहरण हो रहा था। भीम द्वारा वधित दुर्मुख दुर्जय विकर्ण इन दुर्योधन बंधुओं के शव कुरुओं ने बड़ी कठिनाई से रणक्षेत्र से बाहर निकाले। विकर्ण को मारते समय भीम की आंखों के आगे द्युत के बाद वस्त्र हरण की घटना घूम गई। रथ के नीचे उतरकर उसने मुकुट उतारकर विकर्ण की मृतदेह को वंदन किया। कर्ण के विराट पराक्रम से त्रस्त युधिष्ठिर स्पष्ट रूप से युद्ध समाप्ति की भाषा बोल रहा था। भीम के अहंभाव का हरण कर 11वां दिन प्रस्थान कर रहा था, लेकिन शिविर में युधिष्ठिर की आंखों में नींद नहीं थी। 12वें दिन सैन्य संरचना में निपुण राजनिष्ठ द्रोण ने शंख के आकार की सैन्य रचना कर पहले ही प्रहर तक चेकितान, दृढ़सेन, पुरजीत, युगंधर, ध्वजकेतु, वीरकेतु, वृक, शंख, मणिमान, सचित्र, अंशुमत और विख्यात द्रुपदराज को यम सदन पहुंचा दिया। परंतु शिष्य प्रेम के कारण अर्जुन से वे सौम्य युद्ध कर रहे थे। निष्ठा डगमगा रही थी, आखिर प्रेम दुर्बल ही होता है। अचल, उग्रमन्यु, दीर्घायु, वष्ट, सौश्रुति आदि प्रसिद्ध रथियों को अर्जुन ने धराशायी कर दिया। सात्यकी ने अश्वत्थामा, दुशासन और शकुनी को संत्रस्त कर दिया। जब दो प्रचंड पाषाण एक दूसरे से टकराते हैं तब उन पर रेंगने वाली असंख्य चीटियों की पंक्तियां कुचलकर ही नष्ट हो जाती हैं। वैसे ही प्रत्येक पथक के कितने सैनिक काम आ चुके थे, इसकी गणना करना असंभव हो गया था। युद्ध के कोलाहल में हाथी, घोड़े और रथों के आगे आकर प्राणांतक आर्तनाद करते हुए बहुतों ने देह छोड़ दी। युद्धभूमि कटी हुई सूणों, हाथों, पैरों और मुकुट मंडित मस्तकों से खचाखच भर गई थी। क्रुद्ध सिंह की तरह बौखलाया हुआ कर्ण चतुरंग दल में अर्जुन को ढूंढने के लिए स्वच्छंद होकर घूम रहा था, परंतु अर्जुन के रथ की बलगाएं मेरे हाथ में थी। कर्ण के रथ पर श्रृंखलांकित ध्वज की को ध्यान से एकटक देखते हुए मैं यथाशक्ति अर्जुन को उसके विरुद्ध दिशा में ले जा रहा था। उसका अवरुद्ध पराक्रम इतना दाहक था, भीम को उसने जो जीवन दान दिया था उससे कोई भी यह जान सकता था। अर्जुन कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। यह देख कर और अधिक संतप्त कर्ण युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव को बार बार घेर कर रथविहीन कर उनके कंठ में अपना धनुष अटका कर क्रुद्ध नेत्रों से अग्नि की वर्षा करता हुआ विक्षुब्ध होकर उनसे पूछ रहा था, बताओ मेरे सुदामन और स्वर्ण को डसने वाला वह नीला सर्प कहाँ है? बिना कुछ कहे विवृत पांडव अपने पराजय की पीड़ा सहन करते हुए क्षण भर भी उसके सामने न ठहर कर लज्जित होकर सीधे दौड़ रहे थे। राजमाता के वचनों से बंधा हुआ वह सूर्यपुत्र विवश होकर उष्ण सांसें छोड़ता हुआ पांचाल, विराट, मत्स्य, राक्षस इनके पथकों को इस प्रकार काट रहा था जैसे कोई कटाई के अवसर पर कोई कृषक खड़ी फसल काटता है। इच्छा अनुसार पथकों को काटता हुआ वह चारों ओर बिजली की तरह चमक रहा था। एक बार तो उसने युधिष्ठिर को मूर्छित कर उसका रथ एकदम उठाकर दूर फेंक दिया। सैनिक योद्धाओं ने उसको समरांगण से बाहर ले जाकर सचेत किया। कर्ण 60 वर्ष तक सुलगते रहने वाले ज्वालामुखी का प्रलयकारी विस्फोट था, गरजता हुआ प्रभंजन था, कोई भी उसके सम्मुख टिक नहीं सकता था। चक्कर काटता हुआ 12वां दिन भी व्यतीत हुआ। प्रत्येक दिन युद्धभूमि शवों से इस प्रकार खचाखच भर जाती थी कि प्रतिदिन समरांगण बदलना पड़ता था। अभी तक युद्ध में एक भी पांडव का पतन नहीं हुआ था। यह देखकर उस दिन रात को नाते के सभी बंधन ताक में रखकर दुर्योधन सेनापति द्रोण पर बुरी तरह बरस पड़ा। 12 दिनों में 12 लाख कुरु सेना काम आ चुकी है, लेकिन एक भी पांडव अभी तक गतप्राण नहीं हुआ। मेरे 24 भाइयों को भीम ने मार डाला है और उधर एक भी पांडव नष्ट नहीं हुआ। यह युद्ध है या दिग्विजयी सेना द्वारा मनोरंजन के लिए परोसा गया भोजन? गुरुदेव द्रोण, यदि आपका धनुष पांडवों को यमसदन पहुंचाने में असमर्थ है तो अपने राजरथ का ध्वज कल कर्ण के हाथ में दे दीजिए। उसका एक एक शब्द द्रोण का हृदय टूक टूक कर रहा था। इसने अहर निष्कष्ट करके कौरव और पांडवों को निष्ठा के साथ शस्त्र विद्या सिखाई। उनके उन शिष्यों में से कोई भी आज उनकी भावनाओं की चिंता नहीं कर रहा था। उनको अपना अंगूठा काट कर देने वाले कटि प्रदेश में वन्य वलकल बांधने वाले निषद पर्वत की घनी श्रेणियों में भटकने वाले काला शरीर परंतु धवल अंतःकरण के एकलव्य को ही क्रूर काल ने गुरु द्रोण का एकमेव निष्ठावान शिष्य प्रमाणित किया था। सामाजिक रूढ़ियों की अपेक्षा त्याग और निष्ठा सदैव श्रेष्ठ होती है। सबके प्रेम को अपने विशाल तरकश की रिक्तता में ठूंस कर गुरु द्रोण दृढ़ता से खड़े हो गए। शुभ्र दाढ़ी क्षण भर थर थराई। मेरे पराक्रम पर संदेह करने वाले दुर्योधन को कल मैं दिखा दूंगा कि किसी न किसी श्रेष्ठ पांडव के चक्रव्यूह में पड़ी हुई काया देखे बिना कल का सूर्य अस्त नहीं होगा, यह कहकर वे तत्क्षण बैठक में चले गए। 3 हमारे गुप्त दूत ने बैठक का संपूर्ण वृत्तांत जैसा सुना था वैसा ही हमारे सामने निवेदन कर दिया। अर्जुन समेत सभी चिंताक्रांत हो गए। चक्रव्यूह सबसे कठिन सैन्य रचना, कल का सेनापति पद किसे दिया जाए, कौन भेदेगा चक्रव्यूह, चिंतित पांडव क्या क्या सोच रहे हैं, यह मैं चुपचाप केवल आधी घड़ी तक सुनता रहा। सभी लोग भीम को आगे लाने की ही योजना बना रहे थे। भीम कितना भी पराक्रमी क्यों न हो किंतु वह चक्रव्यूह का भेदन कभी नहीं कर सकता था। मैंने एक सेवक को भेजकर अभिमन्यु को बुलवाया। बैठक वाले शिविर में आते ही मैंने उसे कहा, अभी सदा की तरह अभिमन्यु न कहकर अभी कहते ही कथन की मार्मिकता उस अर्जुन पुत्र ने तत्काल जान ली। उसकी तीक्ष्ण नासिका के नीचे दीर्घ ओठ के पीछे उल्का जैसे धवल दांत क्षण भर को चमके। तत्क्षण आगे बढ़कर विनयपूर्वक मुझको वंदन करता हुआ संयत स्वर में बोला, आज्ञा मामा। उसकी विनय और बुद्धिमत्ता देखकर यादवों और पांडवों के रक्त भी एकमात्र चुलबुली निशानी एक वर्ष पहले विवाहित हुए उस 16-17 वर्ष के युवक को कल दांव पर लगाना पड़ेगा, यह सोचकर क्षण भर में मैं भी संभ्रमित हो गया। कुछ भी कहा न गया। सबको चुप देखकर वही बोला, आप सभी इस प्रकार स्तब्ध क्यों हैं, चिंताक्रांत क्यों हैं? कल गुरु द्रोण चक्रव्यूह की दुष्कर सैन्य रचना करने वाले हैं, उसको भेदने का कार्य मैं उसे स्पष्ट कुछ नहीं कह पा रहा था। उसकी गर्भवती पत्नी उत्तरा का विमल मुख आंखों से ओझल नहीं हो पा रहा था। वह कर्तव्य यदि मुझे सौंपा जा रहा है तो यह मेरा सौभाग्य है। आप सबका आशीर्वाद पाकर मैं उसको सहर्ष स्वीकार करूंगा। श्रद्धापूर्वक सबको अभिवादन कर बड़े बूढ़ों और गुरुजनों के बीच बैठने की असभ्यता से अपरिचित वह सुभद्रा पुत्र यमुना से लौटते हुए घोड़ों की सी शांत चाल से शिविर के बाहर चला गया। सबके मन भर आए। युद्धभूमि में इतनी किशोर अवस्था का कोई भी योद्धा नहीं था। कृष्णा चतुर्दशी का दिन उदित हुआ। युद्ध का 13वां दिन था। वह गुरु द्रोण ने चक्रव्यूह की रचना प्रातःकाल के प्रथम पहर से ही सैनिकों को शिविर से बाहर निकालकर शुक्र के धुंधले प्रकाश में तैयार कर दी थी। मुख पर वे स्वयं खड़े थे जैसे गुफा के द्वार पर सिंह। दूसरा अर्जुन ही प्रतीत होने वाले अभिमन्यु ने पांडव सेना का नेतृत्व करते हुए शंख फूंका। भीम, नकुल, सहदेव और युयुधान उसकी रक्षा करते हुए आगे बढ़े। जैसे कंदर्व के छिलके उतार रहा हो वैसे ही एक के बाद एक सेना की पंक्तियां भेदता हुआ अभिमन्यु कौरव सेना में घुसा। द्रोण, शकुनि, दुशासन, जयद्रथ, कृतवर्मा, कृप, अश्वत्थामा, दुर्योधन आदि सबको घायल करता हुआ वह सेना के मंडल पर मंडल तोड़ता गया। जैसे बामी में भुजंग घुसता है वैसे ही वह कौरव सेना में जा घुसा। भीम क्षण प्रतिक्षण पीछे साथ साथ जा रहा था पर अभिमन्यु से उसकी दूरी बढ़ती जा रही थी। स्फुरित बाहों वाला आवेश युक्त स्वयं को भूला हुआ अभिमन्यु पीछे मुड़कर भी न देखता हुआ चक्रव्यूह के केंद्र बिंदु की ओर तीर की तरह चला। हजारों रथी, गजाती, अश्वसाद उसको यम सदन पहुंचाता हुआ वह केवल अकेले ही 7 मंडल भेद कर 8वें मंडल के केंद्र स्थान में प्रविष्ट हुआ। उसके चारों ओर लक्ष्य लक्ष्य केवल कुरु सैनिक थे। फिर भी एकाकी लड़ते हुए उसने शत्रुंजय, तक्षक, सत्यश्रवस, चंद्रकेतु, जयत्सेन और मेघवेग जैसे अतिरथियों को धड़ाधड़ धराशायी कर दिया। संध्याकाल का पहर आ गया था फिर भी अभिमन्यु हटने का नाम नहीं ले रहा था। यह देखकर युद्ध अधिक भयंकर हो उठा। 12 दिनों में इतना भयंकर युद्ध कभी नहीं हुआ था। केंद्र स्थान स्थान पर एकाकी मिले हुए उस सुभद्रा पुत्र द्रोण पर द्रोण, कृप, कृतवर्मा, अश्वत्थामा, बृहद्दल और कर्ण ये 6 महारथी एक साथ ही टूट पड़े। हाँ, उनमें कर्ण भी था। जीवन भर की भ्रांति उसे भींच कर कहीं भी ले जा सकती थी लेकिन अभिमन्यु उन सबके शरण में नहीं गया। अंत में दुर्योधन पुत्र लक्ष्मण और अभिमन्यु में घनघोर गदा युद्ध हुआ। एक दूसरे पर एक ही समय मर्मभेदी प्रहार कर दोनों ही मूर्छित हो गए। पहले लक्ष्मण सचेत हुआ, उसने कुछ भी विचार न कर अपनी गदा का मर्मभेदी क्रूर प्रहार निश्चेष्ट अभिमन्यु के मस्तक पर कर दिया। रक्तवर्णी कमल पुष्प जैसा दिखाई देने वाला उसका मुख छिन्न भिन्न हो गया। मृत्यु से पूर्व चेतना का एक अस्फुट तार उसके मुंह ने छेड़ दिया। काका भीष्म काका, उसको सुनकर सबके मन कठोर मन भी क्षण भर को द्रवित हो गए। परंतु अकेला जयद्रथ दैत्य की तरह आगे आया और वह वास्तव में मरा है या नहीं उसका निश्चय करने के लिए धरती की ओर मुख कर पड़े हुए अभिमन्यु की निश्चेष्ट काया को उल्टा करने के लिए उसने उन्मत्त होकर लात मारी। लक्ष्मण की गदा के भारी प्रहार से आधे से अधिक धरती में धंसा हुआ उसका छिन्न भिन्न मस्तक ज्यों का त्यों धरती में ही रहा, केवल धड़ ही उलट पाया। वह पराक्रमी अर्जुन पुत्र अपने तेजस्वी मुख कमल को किसी भी कौरव योद्धा के दृष्टि में नहीं आने देना चाहता था, इसीलिए उसने उसे परमोद्धार धरती में छिपा लिया था। चक्रव्यूह के ठीक केंद्र बिंदु पर उसकी विच्छिन्न काया जैसी की तैसी पड़ी हुई थी। जयद्रथ की क्रूरता का वृत्तांत जैसे ही अर्जुन को ज्ञात हुआ, उसने अपने विशाल नेत्र फाड़कर गांडीव धनुष ऊंचाकर घोर प्रतिज्ञा की, मेरे प्रिय पुत्र के शरीर पर लात का प्रहार करने वाले असभ्य जयद्रथ को वह कल सूर्यास्त पहले ही यम सदन पहुंचाऊंगा, नहीं तो मैं स्वयं अग्नि में प्रवेश कर स्वर्ग में अपना पितृ छत्र अभिमन्यु के ऊपर लगाऊंगा। अभिमन्यु के शव के चारों ओर सिसकते हुए प्रदक्षिणा करने वाले पार्थ को देखता हुआ ही 13वां दिन घोड़ों के बलगाएं थामे हुए पश्चिम के रंग महल को चला गया। इन 13 दिनों में कुरुक्षेत्र के 13 विशाल प्रांगणों की समरभूमि बन चुकी थी। शव खचाखच भरे पड़े थे। रात के शिविर में मैंने और किसी को न आने दिया और एक राज ज्योतिषी को बुलवाया। भोजपत्र पर अंक लिखकर अंगुलियों पर गिनता हुआ वह गणित करने लगा। आधी रात होने पर उसने अपना सिर ऊपर उठाया, कानों पर सरकते हुए कंटोपी को संवारता हुआ वह बोला, यादव राज हैं, कल अमावस्या को खग्रास सूर्य ग्रहण है, 3रे प्रहर के बाद। मैंने अपने गले से मौक्तिकों की माला उसके ऊपर फेंकते हुए उसको हस्तिनापुर लौट जाने का आदेश दिया। घने अंधकार में वह अदृश्य हो गया। युद्ध का 14वां दिन उदित हुआ। 3रे प्रहर तक मैं अर्जुन को नंदीघोष को कुरुओं के पथक पथक में घुमाता रहा, परंतु जयद्रथ कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। कुरुओं ने उसको समरांगण में आने ही नहीं दिया था। सहस्त्र योद्धाओं से रक्षित एक सुदृढ़ शिविर में छिपा हुआ वह बैठा था। जयद्रथ नहीं मिल रहा था। यह देखकर भड़का हुआ अर्जुन नियतायु मित्रदेव दंडधर आदि को धराशायी करता हुआ एक के बाद एक पथक नष्ट करता हुआ जयद्रथ कहाँ है जयद्रथ कहाँ है कहकर बिजली की तरह थिरकने लगा। युद्ध मग्न सैनिक यह जान भी नहीं पाए कि 3रे प्रहर के बाद यह आकाश आच्छादित कैसे हो गया। कुछ पलों में ही सूर्य संपूर्ण ग्रस्त हो गया, चारों ओर अंधकार छा गया। चहचहाते हुए पक्षियों के झुंड नीड़ों की ओर लौटने लगे, मंजीरे कर्कश्वर में किर किर करने लगे। कुरुक्षेत्र के आसपास सैकड़ों मशाले जल उठी। सबने समझा कि दिन ढल गया, अर्जुन की प्रतिज्ञा भंग हो गई, उसके लिए चिता रची गई। वह सबको अच्छी तरह दिखाई दे सके इसलिए कुरुओं और पांडवों के शिविरों के मध्य रिक्त प्रशस्त स्थान पर वह बनाई गई। भ्रांतचित्त लज्जित अर्जुन ने मुझे युधिष्ठिर को भीम को और अपनी वृद्धा माता को अश्रुपूर्ण नेत्रों से वंदन किया और आज उसके साथ ही उसके गांडीव का पराक्रम भी समाप्त हो गया। यह सोचकर उसको तर्कस के साथ शरीर परिधारण किए हुए वह 8 हाथ ऊंची उस भव्य चिता पर अपमानित नतमस्तक होकर अग्नि प्रवेश के लिए चढ़ा। हाथ जोड़कर उसने नेत्र बंद कर लिए। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्व ओम गायत्री का धैर्यपूर्व मंत्र धीरे धीरे बोलता हुआ वह मृत्यु के लिए सन्नद्ध हो गया। एक सेवक ने कांपते हाथों से मशाल की लौ चिता में लगाई। आसपास कहीं जयद्रथ दिखाई दे रहा है क्या या मैं ही देख रहा था। उत्तरी का छोर स्त्रियों की तरह मुख चारों लपेटे हुए वह दुर्योधन के पीछे खड़ा था। अर्जुन का अग्नि प्रवेश देखकर वह अपनी क्रूर आंखों को शांत करने आया था। एकदम सूर्य ग्रहण मुक्त हुआ, फटे हुए घड़े के जैसे जल की धाराएं बहने बहकर बाहर गिरने लगती है वैसे ही कई किरणों एक साथ बाहर निकली। मशालों पर हंसते हुए सूर्यदेव क्षितिज पश्चिम क्षितिज पर खड़े हो गए। पक्षी कोलाहल करते हुए फिर नीड़ छोड़कर चल दिए। मजीरे की कर्कश ध्वनि शांत हो गई। पार्थ वह देखो सूर्य और वह रहा जयद्रथ। मैंने अंगुली सूर्य की ओर की और फिर जयद्रथ की ओर। जिस स्थान पर वह छिपा था उस स्थान उसे दिखाया। मेरी अंगुली का अग्र अचूक पकड़कर शब्द भेद करने में पारंगत अर्जुन ने क्षण भर में ही हाथ में पकड़े हुए गांडीव को जिम बाण मारा। बाण सर्प गति से चलता हुआ मध्यस्थ सबको बचाता हुआ ठीक जयद्रथ के कंठ को भेद गया। क्या हो गया और कैसे हो गया वह स्वयं अर्जुन को भी नहीं पता चला। अर्जुन के लिए रची गई उस भव्य चिता पर जयद्रथ के शव को जलता हुआ देखते ही 14वां दिन सूर्य ग्रहण का चकमा देकर अस्त हो रहा था। अब युद्ध में क्या होगा यह कोई नहीं बता सकता था। संतप्त दुर्योधन ने तत्काल अपने शिविर में सभी पथक प्रमुखों को बुलवाया। क्षण भर पहले ही जो हृदय विदारक नाट्यमय घटना घटित हुई थी उससे सभी अभिभूत हो उठे थे। उनकी बैठक में पहली बार इतनी अभूतपूर्व असहमति एवं व्याकुलता उत्पन्न हो रही थी। पांडवों की दृष्टि से मैं जो चाहता था वही घटित हो रहा था। अर्जुन द्वारा वधित अपनी भगनी के सौभाग्य के लिए छटपटाते हुए दुर्योधन को धैर्य बढ़ाने के लिए कर्ण बोला, राजन जो विजय कार्तिकेय ने इंद्र को दिलाई थी वही विजय मैं तुम्हें दिलाऊंगा। इंद्र द्वारा प्रदत्त अमोघ वैजयंती शक्ति अर्जुन पर छोड़कर पांडवों के सामर्थ्य का मूल ही मैं नष्ट कर दूंगा। कृपाचार्य को कर्ण का यह विचार हास्यास्पद लगा। तत्क्षण उठकर वे बोले, सुतपुत्र तेरा संपूर्ण जीवन केवल गगनभेदी प्रतिज्ञाएं करने में ही बीता है, क्या उनमें से एक भी तू कभी पूर्ण कर सका है? चित्रसेन गंधर्व के साथ हुए युद्ध में, विराटनगर में गोहरण के समय हुए युद्ध में, भीम के साथ द्वैरथ युद्ध में तूने सदैव पलायन ही किया है। पलायन ही तेरा जन्म भर का धर्म है। किरात रूपधारी शंकर को जीतने वाले अमित सामर्थ्यवान तथा श्रीकृष्ण जैसे सहायक प्राप्त अर्जुन को जीतने के लिए शक्ति किसी में नहीं है। कृपाचार्य का वह मर्म भेदी प्रहार सुनते ही भरी बैठक में कर्ण खड्ग निकाल कर उनकी ओर दौड़ा। पग पग पर मेरा घोर अपमान करने वाले ब्राह्मण, मैं आज तेरी उच्छृंखल जीव ही काटे देता हूँ। यह कहते हुए उसने अपना खड्ग एकाएक उनके कंठ पर रख दिया। दुर्योधन बीच में पड़ गया और उसने कर्ण को शांत कराया, लेकिन इस घटना से एक अवांछित कटु सत्य को साकार कर दिया। अपने मामा का कृपाचार्य का भरी बैठक में यह अपमान भला अश्वत्थामा कैसे सहन करता। उसने भी खड्ग निकाल लिया कर्ण पर, अपने प्राण प्रिय मित्र पर। मेरे मातुल का घोर अपमान करने वाले, डींग मारने वाले कर्ण, अर्जुन के पहले तेरा ही कंठनाल भेद दे देना चाहिए, कहता हुआ वह कर्ण पर झपटा। जीवन भर मन बुद्धि आत्मा, जीवन के इन गहन अंगों पर विचार करने वाले वे दोनों एक दूसरे के प्राण प्रिय सखा थे। यह बात उस बैठक किसी को भी असत्य नहीं लग रही थी, कोई भी सत्य नहीं मान सकता था। इसीलिए तो सत्य कभी कभी कल्पना से भी अधिक भयानक होता है। दुर्योधन ने कुशलता से अश्वत्थामा को भी शांत किया, परंतु सदैव शांत रहने वाला व्यक्ति जब कभी एक बार बौखला उठता है फिर उसका क्रोध उसी की मर्यादा से बाहर हो जाता है। इस सुतपुत्र का अब मुंह भी नहीं देखूंगा, निश्चय के स्वर में बैठक में सभी लोगों से दृढ़ स्वरों में कहकर वह वायु गुरुपुत्र वायुगति से अश्वत्थामा एकदम शिविर से बाहर चला गया। महानदी के तट पर स्थित मंदिर उद्धस्त हो गया। प्राणाधिक स्नेह करने वाले अश्वत्थामा ने आज अज्ञानवश सूतपुत्र कहकर ही संबोधित किया, यह सोचकर कर्ण ने गर्दन नीची कर ली असह्य दुख से। जयद्रथ के आकस्मिक वध से द्रोण, कृप, कर्ण, अश्वत्थामा सभी बौखला उठे थे। अभूतपूर्व रात्रि युद्ध प्रारंभ हो गया। सैकड़ों जलती हुई मशालों के जगमग प्रकाश में गुरुद्रोण ने शिवि राजा पर आक्रमण कर दिया। सोमदत्त सात्यकी पर टूट पड़ा। फिर घोर संग्राम होने लगा। रात के समय ऊंचे पर्वत पर वेणु समूह में आग लगने पर जैसे वेणु तड़ातड़ फटने लगते हैं वैसे ही गरजते हुए शस्त्रों की खनखनाहट दृष्टद्युति के पात्र को भयंकर लगने लगी। शिबि और वाहलिक को मौत की घाट उतारकर गुरुद्रोण पांडव सेना का संहार करने लगे। पांचों पांडवों द्वारा एक ही समय चारों ओर से घिरा हुआ कर्ण सबको अपने बाणों की वर्षा से आच्छादित करने लगा। उसने दृष्टि को खदेड़ दिया। पराभूति दृष्टि द्रोण के सामने जा खड़ा हुआ, नकुल शकुनी के सामने गया। पहली ही बार अर्जुन और कर्ण की मुठभेड़ हुई। रात्रि युद्ध का अभ्यस्त कर्ण अर्जुन को पुनः पुनः विद्ध करने लगा। प्रखर तप्तल लाल लोहे के रस का एक महानदी जैसे कर्ण के रूप में पांडव सैन्य में इच्छानुसार स्वच्छंद विचरण करने लगा। मन को पीछे खींचने वाला कोई बंधन शेष नहीं रहा था, इसलिए कीकय, पांचाल, महारथ इनके पथकों को एक के बाद एक रौंदता हुआ उसका वायुजित अपने नाम के अनुरूप ही स्वच्छंद भ्रमण करने लगा। जैसे क्रुद्ध सिंह गर्जना करता हुआ मृगों के झुंड को खदेड़ देता है वैसे ही अमित सामर्थ्यवान कर्ण पांडव सेना के सहस्त्र सहस्त्र योद्धाओं को रणांगण में से पलायन करने के लिए विवश करने लगा। जैसे झंझावाती प्रभंजन महासागर को मथित कर देता है वैसे ही उसने सामने आए सभी सेना विभागों को मथित कर दिया। अपना पिता सूर्य आकाश में अब नहीं है, यह जानकर कुरुक्षेत्र को जलाने का उनका कार्य पुत्र के रूप में वही निष्ठापूर्वक संपन्न कर रहा था। सातकी, दृष्टद्युम्न, युधान, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, अर्जुन, कोई भी तेज के उस महानद की महाबाण में टिक नहीं पा रहा था। प्रातःकाल तक यह राधे हमारी थोड़ी भी सेना शेष छोड़ेगा या उसे दृष्टद्योति की तरह केवल एक निःशब्द रक्तमयी नदी में रूपांतरित कर देगा। भयभीत युधिष्ठिर प्रत्येक वीर योद्धा को पकड़ पकड़ कर यह पूछने लगा। कर्ण को रोका न गया तो कल का दिन पांडव सेना को दिखाई ही नहीं देगा, इतना विकट समय आ गया, क्या किया जाए? यह प्रश्न पांडवों के सम्मुख आ खड़ा हुआ। इसके लिए एक ही योद्धा था, मायावी युद्ध क्रीड़ा करने वाला घटोत्कच, भीम और हिडिम्बा का पुत्र। भीम के द्वारा मैंने उसको बुलवा लिया, उसके पराक्रम को कहीं अवसर नहीं मिला था। ऐसा विशालकाय वह भीम पुत्र सभी पांडवों का आशीर्वाद लेकर कर्कश सीटी बजाने वाले अरण्य पवन की तरह कौरव सेना पर अपने राक्षस पथक के साथ टूट पड़ा। प्रचंड शिलाएं, विशाल वृक्ष और चक्र परिघ जैसे भारी शस्त्र पुलिंद, स्वयंधव, गांधार, मद्र, अमंत्य आदि के पथकों पर गर्जना करता हुआ वह फेंकने लगा। बकासुर के बंधु अलायुद्ध से उसका एक घटका तक घोर राक्षसी कौर्य का युद्ध हुआ। अनवधतावश अनेक बार उसने अपने ही सैनिक रोंद कर मार डाले। अंत में आधर रात्रि में घटोत्कच ने अलायुद्ध का रोमांचक तथा मन कपा देने वाला वध किया। भयभीत कुरुसेन ने कर्ण बचाओ पुकारता हुआ जिधर मार्ग दिखाई दिया उधर ही भागने लगा। प्रत्येक मार्ग पर उसे रोक कर कर्ण घटोत्कच का सामना करने का निश्चय कर आगे आया। ज्वार से विक्षुब्ध सागर की तरह वे दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े। सभी सैनिक अवाक होकर स्वयं युद्ध भूल कर उस सूर्यपुत्र और भीमपुत्र का मृत्यु को कंपा देने वाला महासंग्राम प्रेक्षकों की तरह देखने लगे। क्षण भर में आकाश में जो, क्षण भर में धरती पर, इस प्रकार कर्ण को मायावी भुलाव में डालकर घटोत्कच मेघ की तरह गरजता हुआ, प्रचंड पाषाण, भारी गदाएं, हाथ के विशाल चक्र और मृत हाथियों के शव दो घड़ी तक अविरत उसके ऊपर बरसाता रहा। परंतु जैसे गौरिक पर्वत से धातु स्राव हो रहा हो वैसे ही बहते हुए असंख्य घावों को हंसते खेलते सहन करता हुआ पलाश वृक्ष की तरह तिल भर भी विचलित न होता हुआ कर्ण उस पर अनेक दिव्यास्त्र फेंक रहा था। पुनः पुनः सूर्य स्रोत कहता हुआ वह गोलाकार घूमते हुए बाणों के प्रपात बरसा रहा था। हजारों कुरुसैनिक घटोत्कच के दिंग मूढ़ करने वाले मायावी आक्रमण से गत प्राण हो रहे थे, चीख रहे थे। बौखलाए हुए कर्ण ने घटोत्कच के रथ के सारथी विरूपाक्ष को एक मर्म भेदी बाण से धराशायी कर दिया। चिंताक्रांत दुर्योधन ने बीच में ही कर्ण के रथ के पास जाकर उसका हाथ उठाकर उसको सूचित किया, कर्ण, इंद्र द्वारा प्रदत्त वैजयंती शक्ति इस घटोत्कच राक्षस पर छोड़ो, नहीं तो कुरुसेना कल का दिन नहीं देख पाएगी। अंगराज, वैजयंती छोड़ो। नहीं दुर्योधन, वैजयंती अर्जुन के लिए ही सुरक्षित रखी है। जीवन भर के द्युत में से वही एक पासा मेरी लाज रखने के लिए अब मेरे हाथ में रह गया है। दुर्योधन के कान के पर्दे फट जाएं इतनी जोर से चिल्लाकर कर्ण ने अस्वीकार किया। घटोत्कच द्वारा भयभीत किए गए गुरु सैनिक घुटने टेक कर लक्ष लक्ष मुखों से दीन स्वर में चिल्लाए, दानवीर कर्ण, वैजयंती छोड़िए, हमारे प्राण बचाइए, घटोत्कच का वध कीजिए, हमें प्राण दान दीजिए। दान, दो अक्षरों का यह शब्द उसको जीवन भर सदैव मुग्ध करता आया था। उस शब्द से पूर्ण रूप से जकड़ा हुआ उसका उच्चात्मा क्षण भर में द्रवित हो गया। आंखें बंद कर उसने क्षण भर चिंतन किया और अपने तर्कश से इंद्र द्वारा प्रदान की गई वैजयंती शक्ति घटोत्कच पर फेंकी। अब उसका जीवन अक्षरश रिक्त तर्कश जैसा ही हो गया था। मायावी घटोत्कच भयंकर चित्कार करता हुआ इतनी विशाल देह धारण कर नीचे गिरा कि ऐसा आभास हुआ मानो आकाश की छत ही टूटकर ऊपर गिर पड़ी हो। अशोक वृक्ष गिरते ही उसके नीचे असंख्य दीमक कीट जैसे कुचल कर मर जाते हैं, वैसे ही उसके देह के नीचे कुचल कर ही बहुत से कुरु सैनिक गत प्राण हो गए। रात्रि युद्ध समाप्त हुआ। कर्ण को रक्तिम कर देने का घटोत्कच का जीवन कार्य भी समाप्त हुआ। दूर कहीं एक वन्य मुर्गी ने सूर्योदय की बांग दी। 15वां रोमांचक दिन उदित हुआ, शुक्ल प्रतिपदा का अविस्मरणीय दिन।